अभिवादन, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक है, दो ही संपत्ति दो ही विभूति, योग एवं तप। पूज्य गुरुदेव इसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, तो क्यों ना हम भी वहीं से शुरू करें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। तो आज का हमारा लक्ष्य है योग और तप के असली मतलब को समझना, मतलब जो अक्सर हम पूजा पाठ या कर्मकांड करते हैं उसके पीछे का या उससे आगे का सच क्या है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पूजा पाठ अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर वो एक तरह से शुरुआत है। जैसे बच्चे नहीं होते गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, उससे वो जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां सीखते हैं धीरे धीरे। वैसे ही चावल, धूप बत्ती, फूल चढ़ाना, ये सब तरीके हैं हमें ईश्वर की ओर ध्यान ले जाने के। प्रारंभिक अभ्यास हैं ये।
हाँ, मतलब ध्यान को परमात्मा की ओर मोड़ने के तरीके।
जी हाँ, पर ये अपने आप में मंजिल नहीं है।
हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो ये कहते हैं कि पूजा पाठ का ही जो विकसित रूप है वो योग और तप है।
और योग सुनते ही हमारे दिमाग में आसन या शारीरिक क्रियाएं आती हैं, पर यहाँ मतलब वो नहीं है शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ इसका अर्थ बहुत गहरा है। योग का जो मूल शब्द है उसका अर्थ ही है जुड़ना, युञ्जते इति योगः, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना, एकाकार कर देना।
अच्छा,
ये कोई बाहरी क्रिया या कर्मकांड नहीं है, ये पूरी तरह से एक भावनात्मक, एक चेतना का मिलन है।
कहते भी तो हैं, भगवान भावना के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं।
सही कहा।
चेतना को चेतना से जोड़ने के लिए तो चेतना के स्तर की ही क्रिया चाहिए ना।
बिल्कुल, और उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही है, जीवन के शीर्षासन की, दुनिया को उल्टा देखना। इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सोचिए, जैसे शीर्षासन में हमें भौतिक दुनिया उल्टी नजर आती है ना, वैसे ही योगी का जो नजरिया होता है वो सांसारिक व्यक्ति से एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। जो आम दुनियावी इच्छाएं मान्यताएं हैं वो उसके लिए गौड़ हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं।
अच्छा।
वो अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह मिला देता है, विलीन कर देता है। योग में ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता।
नहीं तो फिर?
बल्कि स्वयं को ही ईश्वर को सौंप दिया जाता है, पूरा समर्पण। जैसे हजरत इब्राहिम की कथा है ना।
हाँ हाँ।
अपनी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी देना, यहाँ वो प्रिय वस्तु क्या है? अपना अहंकार, अपना स्वार्थ, अपना मैं। इसी मैं की कुर्बानी देना ही सच्चा योग है।
वाह, तो योग हुआ पूर्ण समर्पण। अब आते हैं तप पर। तप शब्द सुनते ही तो अक्सर कठोर साधना का ख्याल आता है, जैसे शरीर को कष्ट देना, उपवास करना। क्या पूज्य गुरुदेव का इशारा उसी तरफ है?
नहीं, देखिए, कष्ट सहना तप का एक हिस्सा हो सकता है, पर उसका मतलब सिर्फ कष्ट सहना नहीं है। तप का असली अर्थ है तपाना या गर्म करना। जैसे कच्ची ईंट होती है ना।
हाँ।
आग में तपकर वो पक्की और टिकाऊ बन जाती है, या साधारण लोहा तपकर फौलाद बन जाता है।
अच्छा।
वैसे ही तप का उद्देश्य है अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाना, अपने संकल्प को मजबूत करना, आत्मबल बढ़ाना। ये स्वेच्छा से अपनाया गया अनुशासन और सादगी है। इससे व्यक्तित्व निखरता है, कीमती बनता है।
तो हम अपने जीवन में तप को कैसे ला सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? इसके कुछ व्यवहारिक तरीके बताए हैं गुरुदेव ने।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव दो मुख्य बातें बताते हैं। एक तो है इंद्रिय निग्रह।
इंद्रिय निग्रह यानी
अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। खासकर दो इंद्रियों पर जोर दिया है, एक तो जीभ।
जीभ खाने के मामले में?
खाने के मामले में भी, क्या अभक्ष्य है वो ना खाना, और बोलने के मामले में भी व्यर्थ न बोलना, कड़वा न बोलना। और दूसरी है कामेंद्रिय। इस पर संयम रखना मतलब मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, हर नारी में माँ या बहन का स्वरूप देखना। इससे होता क्या है कि हमारी जो शक्ति है वो बाहर बिखरने से बच जाती है और आत्मबल में बदल जाती है।
अच्छा, ये तो हुआ इंद्रिय निग्रह। और दूसरा तरीका?
दूसरा तरीका है तितिक्षा और सादगी। तितिक्षा मतलब कठिनाइयों को धैर्य से सहना, जानबूझकर सादा जीवन जीना। वो सिद्धांत है ना, सादा जीवन उच्च विचार।
हाँ, हाँ।
अपने धन और जो भी साधन है उनका उपयोग व्यक्तिगत ऐशो आराम में न करके समाज की भलाई के लिए करना। पूज्य गुरुदेव इसे समाज का ऋण चुकाना कहते थे और अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए कष्ट सहने को तैयार रहना, जैसे रामायण में जटायु ने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए कष्ट सहे थे ना।
हाँ बिल्कुल। तो ये जो समर्पण है योग का और ये जो आत्म अनुशासन है तप का, इसका अंतिम परिणाम क्या होता है, व्यक्ति क्या बनता है इस रास्ते पर चलकर?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो सच्चे योग और तप के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति या तो संत बनता है।
संत?
हाँ, संत मतलब जो अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अडिग रहता है, या फिर वो सुधारक बनता है।
सुधारक, समाज सुधारक।
जी, जो समाज की बुराइयों और गलत रीति रिवाजों से लड़ता है, संघर्ष करता है, या फिर वो शहीद बनता है।
शहीद,
जो उच्च आदर्शों के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर देता है। ये यात्रा आसान नहीं, पर ये व्यक्ति को असाधारण आत्मबल देती है, अटूट आंतरिक शांति देती है और ईश्वर की गहरी अनुभूति कराती है।
तो संक्षेप में कहें तो पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब तो बस पहली सीढ़ी है। असली आध्यात्मिक यात्रा तो योग यानी स्वयं को ईश्वर में पूरी तरह मिला देने और तप यानी इच्छा शक्ति से खुद को परिष्कृत करने, बदलने से होती है। ये बाहरी क्रिया नहीं, ये तो चेतना का रूपांतरण है।
बिल्कुल सही कहा। ये कुछ गिनी चुनी क्रियाएं करने तक सीमित नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है, एक तरीका है, स्वयं को और दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण, भीतर से बदलने की प्रक्रिया है ये।
तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केवल बाहरी रस्मों और क्रियाओं में ही लगा रहे हैं, या उसे योग और तप के जरिए उस भीतरी शक्ति को जगाने में लगा रहे हैं जो हमें संत, सुधारक या शहीद के स्तर तक उठा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति है।